आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी का हम करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जो भी भाई बहने पीछे बैठे हैं कुर्सी में, वो सोफा खाली है, आगे की कुर्सी भी खाली है, सभी आगे आकर के बैठेंगे। भाई साहब का मैं परिचय देना चाहूंगी। आप 30 वर्ष से ज्ञान में हैं, 20 वर्ष से मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल में समर्पित हैं। आप वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। 1995 में आप मधुबन आए, आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2008 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा भी आप सम्मानित हुए। 2000 में यूएसए के द्वारा एवं 2001 में लंदन से भी आपको अवार्ड प्राप्त हुए हैं। और आज जो हम देखते हैं, यहाँ जो हार्ट का प्रोग्राम होता है, दिल के जो मरीज होते हैं कैट ग्रुप वाले, तो ऐसे मरीज जो कि मधुबन में आकर 6000 से भी ज्यादा भाई बहनों का आपने राजयोग के माध्यम से उनका सफल इलाज आप किए हैं, और देश विदेश में भी आप ऐसे राजयोग के द्वारा बीमारियों से हम कैसे लड़ें और अपने जीवन को अर्थात तन मन को कैसे सफल बनाएं, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ होगा तब तो बाबा की भी याद आएगी। और इसी विषय पर हमें भाई साहब जो है भरपूर करने जा रहे हैं ज्ञान से। आपका विषय है विकर्माजीत कर्मातीत कैसे बने, अर्थात ऐसा क्या हम प्रयोग करें कि चलते फिरते भी हम अपने आप को हल्का रख सकें। आदरणीय भाई साहब मुंश
ओम शांति। अभी एक दिन पहले ही हम सभी ने अपने प्यारे बाबा मीठे बाबा से मुलाकात की और सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी को वाह बच्चे वाह, वाह भाग्यवान बच्चे वाह। बाबा हमें कितना, बाबा ने कहा बाबा बच्चों के बगैर रह नहीं सकता है ना, और बच्चे भी बाबा के बगैर रह सकते हैं। तो सच्चा प्यार कभी मिट नहीं सकता है ना, हमारा अमर प्यार है ना बाबा के साथ। तो ऐसा बाबा कहता है कि बच्चे जल्दी जल्दी कर्मातीत बन जाओ, विकर्माजीत बनो कर्मातीत बनो। और बाबा ने इस बार वरदान दिया ना, तीव्र पुरुषार्थी भव, याद है प्यार प्यार में बाबा ने सब हम सभी को क्या वरदान दिया था, अमृत वेले रोज अपने आप को रिवाइज करो, तीव्र पुरुषार्थी भाव का बाबा से वरदान लो। तो आज इस बात को हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हम विकर्माजीत बने और कैसे हम विकर्माजीत बनके कर्मातीत बनके और संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनके बाबा के साथ वापस घर जा सके, और कैसे इसमें हमारी बेहद की सेवा समाई है, इस बात को हम गहराई से समझेंगे। इसलिए अपने मन बुद्धि को आप एकाग्र करके बैठेंगे, अपने अगर आपके जो मोबाइल से अगर स्विच ऑन है तो स्विच ऑफ कर दें अब अगले एक घंटे के लिए, ताकि मन बुद्धि एकाग्र कर लें। और एक मिनट के लिए फिर हम दोबारा से बाबा को याद करते हैं, अपने मन बुद्धि को एकदम, बाकी किसी भी तरह के संकल्प, दुनिया के संकल्प, देह के संकल्प, बाकी संकल्पों को स्टॉप करके सिर्फ मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, इसी में मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, उसी की अनुभूति में आप बैठ जाएं। चलिए एक मिनट सभी आंखें खोल के इसी में अपना ध्यान केंद्रित कर लें। सभी सीधे होके बैठ जाएं। Thank you. ओम शांति। विक्रमाजीत कर्मातीत बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ। सबसे पहले हमें समझें कि विक्रमाजीत कैसे बने। अभी जो हमारी स्थिति है, अभी हम भले हम ज्ञान में 20 साल से चल रहे हैं, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से चल रहे हैं, कि तो अभी भी हम रोज अमृत वेला योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, अटेंशन भी रखते हैं, हम में से कई भाई बहन अपना चार्ट भी रखते हैं, किंतु हम विक्रम भी रोज कर रहे हैं नहीं करते हैं? विक्रम विनाश भी कर रहे हैं और विक्रम कर भी रोज रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो हम देखें विक्रम क्या चीज है। सबसे पहले तो हम ये देखें कर्म, खाली हाथ पैरों से कर्म करने को कर्म नहीं कहते हैं, देखना भी कर्म है। मान लीजिए मैंने कोई ऐसी चीज देख ली जो श्रीमत के खिलाफ है तो विक्रम हो गया। तो देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, कोई चीज को छूना भी कर्म है, और हाथ पर से या शरीर से कोई भी ऐसा काम करना वो भी कर्म। अगर वो कर्म पांच विकारों के वश होता है, काम विकार के वश में किसको देखूं, क्रोध के वश किसको देखना है, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश किस चीज को देखना, वो विकर्म है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कोई चीज पढ़ना, कोई मैगजीन पढ़ना, किताब पढ़ना, वो भी विकर्म है। इसी प्रकार सुनना, किसी विकार के वश कुछ सुनेंगे ना तो वो भी विकर्म होगा। इसी तरह से बोलना, खाना, मैं गुस्से में खाना खाऊं, विकर्म है। स्वाद है खाना बहुत, उस स्वाद में बैठ के खाना खाऊं, वो भी विकर्म है। ज्यादा खाऊं, विकर्म है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश किसी से बोलना, वो भी पाप है। किसको छूना भी पाप है अगर किसी विकार के वश। ये तो पांच विकार मोटे मोटे हो गए, फिर इनके अंदर अंश है, जैसे आलस्य। आलस्य के वश भी अगर आप किसी को देख रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब जो भी हम कोई आलस्य के वश भी कोई भी कर्म करना वो भी कर्म हो जाता है। अलबेलेपन के अंदर किसी में दूसरे में दोष निकालने की आदत अगर आपको है, उसके वश होकर कर्म कर रहे हैं कोई, तो वो भी कर्म है। अगर किसी से बदला लेने की भावना के वश होकर कर्म कर रहे हैं, वो भी विकर्म है। किसी पे शक करके उस पे कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो भी विकर्म हो जाता है। अगर अनुमान लगा के कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो भी विकर्म है। चिंता में कोई कर्म करते हैं, तो वो भी विकर्म हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है। चिंता के वश, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, डर के वश भी कोई कर्म करते हैं, वो भी पाप होता है। किसी बात के प्रेशर के अंदर आके काम करते हैं, वो भी पाप होता है। टाइम का प्रेशर, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी में आपने कोई काम कर दिया, वो भी पाप है। टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, फैमिली का प्रेशर है, आपको नाम मान शान की बहुत इच्छा है, उसके वश में आपने आके किसी कुछ ऐसा काम कहा, किसी कुछ बोल दिया, है ना, कुछ खा लिया उसके वश, तो वो भी पाप कर्म है। ईर्ष्या द्वेष के वश होकर भी कर्म करें, तो भी विकर्म है। कंपैरिजन कंपटीशन में आके किसी के साथ कोई काम करते हैं, तो वो भी विकर्म, पाप कर्म होता है। और ये ध्यान रहे कि हम द्वापर युग से 63 जन्मों से जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, हाथ पैर से कर्म करते हैं, वो अंदर सब रिकॉर्ड होता रहता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। अंदर रिकॉर्ड होता है, दिमाग में भी रिकॉर्ड होता है और आत्मा में भी रिकॉर्ड होता है। सॉफ्ट फाइल आत्मा में रिकॉर्ड हो जाती है और हार्ड फाइल उसकी हमारे दिमाग में रिकॉर्ड। और जैसे ही वो परिस्थिति हमारे सामने आती है, वो ये पाप कर्म क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा जिसके साथ वो पाप कर्म किया, ये जैसे वो परिस्थिति मेरे सामने आएगी वो पाप कर्म ऑटोमेटिक दोबारा हो जाता है। और जब भी हम वो पाप को काम करेंगे, ये करते हैं, तो क्या होता है, आत्मा के पास जो 7 गुण हैं, आत्मा के जो 7 एनर्जी हैं, वो 7 एनर्जी कमजोर हो जाती, ज्ञान की बजाय अज्ञान आ जाएगा। जब वो हम विकर्म करेंगे, वो जैसे याद आएगा विकर्म, तो ज्ञान की बजाय ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान माना हम अपने को आत्मा भूल करके अपने को देह समझने लगेंगे या रोल कॉन्शियस हो जाएंगे, मैं डॉक्टर हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, ईगो आ जाएगी अपने अंदर, ये भूल जाएंगे मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। बाप भूल जाएगा, ड्रामा भूल जाएगा, राइट। तो जब भी हम कोई विकर्म करते हैं उससे हमारी आत्मा रूपी बैटरी कमजोर होती है, कमजोर होने से ज्ञान की बजाय क्या आएगा, अज्ञान आ जाएगा। पवित्रता की बजाय क्या आ जाएगी, अपवित्रता आ जाएगी। शांति की बजाय क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अशांति आ जाएगी। प्रेम की बजाय क्या आ जाएगा, क्या आएगा, क्रोध आएगा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आएगा। और सुख की बजाय क्या होगा, दुख की अनुभूति होगी। आनंद की बजाय उदास हो जाएंगे, और शक्तिशाली होने की बजाय कमजोरी अनुभव होगी, सहन करने शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हम कोई भी विकर्म करते हैं वो विकर्म हमसे बार बार होते रहते हैं, और जितना हम बार बार करते जाएंगे उतना फिर हमारी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, आत्मा रूपी बैटरी का डिस्चार्ज होने का मतलब है कि आत्मा में ये 7 गुण, 7 एनर्जी, 7 ऊर्जाएं, जिससे आत्मा रूपी ज्योति चमकती है, आत्मा में प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश सारे शरीर में फैलता है, वो एनर्जी सारे शरीर, उससे सारे शरीर के अंग काम करते हैं, हमारा मन पॉजिटिव रहता है। जब आत्मा में 7 गुण भरपूर हैं तो मन पॉजिटिव रहता है, बुद्धि दिव्य रहती है, ठीक काम करती है, समझ जिसे कहते हैं, समझ ठीक रहती है, और संस्कार, बुरे संस्कार दबे रहते हैं, मर्ज हो जाते हैं। किंतु जैसे ही आत्मा कमजोर होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो मन नेगेटिव हो जाता है या व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट बातें, बेकार की बातें बुद्धि में, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये व्यर्थ संकल्प आने लगते हैं, या नेगेटिव, नेगेटिव माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश के संकल्प आने लगते हैं, और व्यर्थ माना जो क्या क्यों कैसे के वश में होकर के हम सोचने लगते हैं। और बुद्धि, दिव्य बुद्धि कुंठित हो जाती है, दिव्य बुद्धि काम नहीं करती है, बेसमझी से बोलेंगे, बेसमझी से काम करेंगे, अकल काम नहीं करेगी, और बुरे संस्कार, तमो प्रधान संस्कार, विकारों के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, संस्कार में आते हैं, हैबिट्स आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी हम क्या कर बैठते हैं, बार बार फिर पाप कर बैठते हैं, और ऐसे पापों का बोझा बढ़ते बढ़ते हम फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, अंदर से हिम्मत हार जाते हैं, अंदर सोचते हैं हम तो रोज मुरली सुन रहे हैं, फिर अमृत वेला भी उठ रहे हैं, फिर भी गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी हमें अंदर से ये हमें लगाव, झुकाव, टकराव खत्म नहीं होता है, है ना, अहंकार खत्म नहीं होता है, हमें बार बार बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में रोब डालने की आदत पड़ गई है, बात बात में रोना आता है, थोड़ी थोड़ी बात फील कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं होता है? होता है, बहनों को ज्यादा होता है, माताओं को ज्यादा होता है ना, भाइयों को भी होता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है ना, किसी के विचार बार बार अपने आप आते रहेंगे, आप नहीं चाहते कोई विचार है, आपका ध्यान बाबा में लगे, है ना, किंतु आपका ध्यान बाबा में नहीं लगता है, ध्यान उन्हीं बातों में जाता रहता है बार बार, ना चाहते हुए भी, तो ये फिर हमसे होता रहता है, राइट। तो ये विकर्म जो है हमको हल्कापन फील नहीं करने देते, आत्मा में लाइटनेस नहीं आती है, हम कर्म करते करते भारी महसूस करते हैं, खुशी चेहरे पे आए खुशी नहीं आती है, फिर आलस आएगा, सुस्ती आएगी, अलबेलापन आएगा, दूसरों पे शक करते हैं, अनुमान लगाते हैं, दूसरों में अपनी अपनी प्रॉब्लम हमारी होती है, दूसरों में दोष निकालते हैं कि इसने ऐसा किया ना इसलिए मेरे को ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोला इसलिए मेरे से ऐसा निकल गया, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, बदला लेने की भावना रखते हैं, रिवेंजफुल बिहेवियर रखते हैं ना? तो ये इस तरह से हमारे अंदर चिंता भय जागृत हो जाती, मैंने कहा प्रेशर महसूस होते और ईर्ष्या द्वेष महसूस होता, तो ये फिर हमारे अंदर दिन पे दिन हमारा टाइम वेस्ट बहुत होता, हमारी काम करने की शक्ति कम हो जाती। तो वो हम कैसे करें, कैसे इन विकर्मों को विनाश करें, क्योंकि विक्रम विनाश होने के बाद बाबा कहता है, रोज कहता है बच्चे कर्मातीत स्थिति बनाओ, है ना, कर्मातीत तो बनना है, कर्मातीत माने वो कर्म माने जो कर्मातीत स्थिति का अर्थ है किसी भी कर्म का हमारे ऊपर असर ना हो। अभी जब हम हैं, अगर हम किसी का भला करते हैं ना, कोई अच्छा काम भी करें किसी का, उसको भी हमसे लगाव हो जाता है या हमको उससे लगाव हो जाता है, वो व्यक्ति अच्छा लगता है, उससे फोन पे बात करने को दिल करेगा, उससे मिलने को दिल करता है या उसका हमसे मिलने को दिल करता है, वो भी बंधन बन जाता है, नहीं बनता है, बंधन बनता है, नहीं बनता है। तो अच्छा काम भी बंधन बन रहा है और बुरा काम भी बंधन बन रहा है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस समय हमारा हर कर्म बंधन का रूप बनता जा रहा है, और कर्मातीत स्थिति वो स्थिति है जिसमें कर्म का बंधन नहीं बनता है। हम लोगों के संबंध में आते हैं, कर्म करते हैं, किंतु कर्म का बंधन नहीं बनता है। तो कर्मातीत मतलब कर्म करते हुए कर्म के बंधन से अतीत पार, है ना, कर्मातीत स्थिति। तो कर्मातीत स्थिति बनने वाले, जब हमारी स्थिति कर्मातीत हो जाती है तो ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, नहीं तो जितनी हमारी बैटरी सुबह हमने अमृतला चार्ज की, अपने को आत्मा समझ के बाबा को 45 मिनट हमने याद किया, 45 मिनट में से मुश्किल से 5 मिनट भी हमारा बाबा से स्ट्रांग कनेक्शन नहीं लगता है, मैं यथार्थ याद नहीं होती है, एक्यूरेट याद। आपको पता है बाबा ने मुरली में 21 जनवरी की मुरली में बाबा ने बताया था, एक्यूरेट याद के लिए 3 बातें चाहिए, कौन कौन सी 3 बातें चाहिए याद है किसी को, 21 जनवरी की मुरली में इसी साल की 2015 याद है, किसको याद है, हाथ उठाओ। एक्यूरेट याद के लिए 3 बातें, एक तो पहले धैर्यता चाहिए, धैर्यता, पेशेंस, धीरज, दूसरा गंभीरता चाहिए, सीरियस होकर के हमें याद करना चाहिए। धीरेता माना धीरज रखो, आराम से बैठ, जल्दी जल्दी में याद होती है क्या, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संस्थान में तुरंत कनेक्शन लगता है क्या, मैं आत्मा हूं इसको फील करो, अनुभव करो गहराई से, शांति से, बार बार अंदर अंदर कमेंट्री नहीं करो, एक के बाद एक लाइन बोलते जाओ अंदर अंदर, है ना, और वो योग महसूस, उसे योग नहीं कहते, धीरज से स्लो अनुभव करते हुए कदम आगे बढ़ाओ धीरज के साथ, फिर गंभीर गंभीर होकर उसको अनुभव करो, जब तक वो अनुभव नहीं हो आगे मत बढ़ो। समझ, तीसरी बात समझ, तो धैर्यता, गंभीरता और समझ के साथ, समझ माना क्या, मैं कौन हूं ये समझ होनी चाहिए, मैं कौन हूं, हम आपस में कौन है, भले कोई भी है, भाई है, बहन है, बड़ा है, छोटा है, पर है कौन, अलौकिक रूप में कौन है, कोई गलत काम कर रहा है किंतु अलौकिक रूप में हम क्या हैं, क्या मेरे को हक है उसको रोकने का या डायरेक्शन देने का, या बाबा बैठा हुआ है या निमित्त आत्माएं बैठी हुई है उसको ठीक करने के लिए, या मैं ही करता हूं, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों करती हैं। हर आत्मा आप ड्रामा के अनुसार अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, उसमें मुझे क्या हक है कि मैं बोलूं, राइट। तो ये जो है अपने अंदर से गहराई से इसको समझ, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, आपस में हम कौन, भाई भाई हैं, हमारे संबंध आपस में नहीं है, आपस में तुम्हारे भाई भाई का एक ही संबंध है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, या बड़ा हो या छोटा हो, किंतु हमारे सर्व संबंध उसके साथ है। कैसे कि एक संबंध की अनुभूति वो समझ के साथ हम अनुभूति करें, और ड्रामा, एबीसीडी है ना, समझ में ना, ज्ञान, ज्ञान माना एबीसीडी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन संबंध, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, मुख्य नौ संबंध, माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, बंधु माना बड़ा भाई है ना, सखा, सखा माना दोस्त, साजन, साजन माना साजन जो प्रेमी है ना, प्रेमी या प्रेमिका या उसको हम क्या कहें, पति है ना या पत्नी, जो भी मतलब जो संबंध हमारा किसी भी देहधारी से होता है, जो उसको हम बहुत प्यारा समझते हैं, वो हमारा संबंध उसके साथ। सर्जन, हमें कोई भी रोग है, मन का, तन का, कोई भी रोग है, सबसे पहले हमें डॉक्टर याद नहीं आना चाहिए, वो याद आना चाहिए, वो हमको बताए कि तुम क्या करो। उसकी सर, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर याद नहीं आए, गोली याद नहीं आनी चाहिए, मुझे बाबा याद आना चाहिए। बाबा, फिर बाबा की याद से अपने आप ठीक हो जाए, नहीं को बाबा कहेगा बच्चे तुम ये गोली खा लो ठीक हो जाएगा, बच्चे तुम उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा किस डॉक्टर से हिसाब किताब है। बाबा टच करे आपको कि उस डॉक्टर के पास, बाबा बताए कि तुम ये कर दो, तो हम उसकी डायरेक्शन पर चले, क्योंकि सुप्रीम सर्जन वो है। बाकी दुनिया में जितने डॉक्टर्स हैं, जितने भी सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो सारे उसके असिस्टेंट्स हैं, नहीं तो हमें इस तरह से अपने आप को हर संबंध में उसकी याद आनी चाहिए, सर्जन और फिर बच्चा। जब हम कोई भी हम हैं, बड़े हो जाते हैं, तो जो कुछ हम कमाते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो भी हमारे पास होता है, हम सारा अधिकार उसको दे देते हैं कि मेरे मरने के बाद या अभी जीते जी भी तुम इसको यूज करो। तो ऐसे ही हम अपना सब कुछ, तन मन धन, मन वचन कर्म, हर चीज, हर संबंध, अपना लौकिक जिम्मेवारियां, अपनी अलौकिक जिम्मेवारियां, जहां भी आप काम करते हैं वो जिम्मेवारी, कोई चीज आपसे नहीं संभलती है वो जिम्मेवारी बाबा को दे, बच्चा समझ के वारिस बना के उसको, बाबा ये तुम संभालो। तैसे नौ संबंध का बहुत गहरा अनुभूति होनी चाहिए, इसी को हम योग कहते हैं। योग माना बेसिकली और कुछ नहीं है। कई बार हम कहते हैं योग, योग कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। कई भाई बहन आते कहते हैं भाई साहब उनको योग सिखाओ, सेंटर पे कई भाई बहन आते हैं ना, पूछते हैं ना, बहन जी हमें योग सिखा दो। योग कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, ज्ञान का गहराई से अनुभव करना ही योग है, ज्ञान का स्वरूप बनना ही योग है। जैसे ये ज्ञान है, मैं देह नहीं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अब उसको अपने देह ना समझ के, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा मृत्यु के मृत्यु रूपी तख्त पर बैठी है, उसको अनुभव कर लेना ही योग है। मैं आत्मा यहां बैठ के सब कुछ चला रही हूं, हर शरीर के एक एक अंग को, एक एक सेल को, इस अनुभूति में टिक जाना ही योग है। याद है ना, अपने निज स्वरूप की स्थिति में टिक जाना ही याद है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव के संतान हूं, इसकी फीलिंग में टिक जाना ही योग है, याद है। और जब उस याद में हम एकाग्र हो जाते हैं, उसकी गहराई में चले जाते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, एक ही संकल्प आ जाता है, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, और परम धाम में ये स्थिति है मेरी, परम धाम में उसको याद कर। यथार्थ याद क्या है, बाबा ने कल की मुरली भी थी ना, यथार्थ याद द्वारा विक्रम विनाश होते हैं। यथार्थ याद क्या है, मैं जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म, जितने भी पांचों पांचों तत्व है ना, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, किस चीज से बने, किस चीज से बने, एटम से बने ना, परमाणु से बने ना। हवा में भी क्या होते हैं, एटम्स होते हैं ना, ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, पानी में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड के एटम है ना, H2O के है ना एटम्स है ना, मॉलिक्यूल अणु है, फिर उसके टुकड़े को परमाणु कहते हैं, और परमाणु का भी आगे क्या है, न्यूट्रॉन है, उससे भी छोटा उसका अंग, और उसके भी छोटे से भी छोटा क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन से भी छोटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का भी सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, बोजोन कहते हैं उसको, बोजोन। वो बोजोन इतना छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम एटम को भी आंखों से देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, कोई मशीन से हम एटम को देख नहीं सकते। और बोजोन इतना फाइन पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि हमारे विचार करने से भी हिल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब, और ये तो जो आत्मा है, आत्मा तो पांचों तत्वों से परे, एटम से भी परे, सब एटॉमिक पार्टिकल से भी परे। और आत्मा वो चीज जिससे विचार पैदा होते हैं, बोजोन तो विचार करने से हिलता है, उसकी स्थिति हिल जाती है, तो आत्मा से जो विचार, आत्मा से तो विचार पैदा होते हैं, तो आत्मा कितनी सूक्ष्म है, देख सकते हैं आंखों से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कोई चीज से भी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान में जो योग है, योग की विधि जो बाबा ने बताई है वो है रियलाइजेशन। बाबा की जो मुरली में बाबा ने जो बातें बताई, बाबा की जो श्रीमत, जैसे आज बाबा की श्रीमत थी, क्या श्रीमत थी, मीठे बच्चे, बाबा ने कहा मीठे बच्चे थे ना आज का, क्या था मीठे बच्चे, क्या है मुख्य श्रीमत, क्या है अपने को आत्मा समझ, क्या करो मुझ परमात्मा बाप को याद करो, ये मुख्य श्रीमत है ना। अब ये जो बाबा ने बात बताई, ये श्रीमत है बाबा की, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। अब इस श्रीमत को हम अनुभव करें, आत्मा को अनुभव करें, मैं कैसे अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा दोनों भृक्तियों के मध्य, इस शरीर रूपी तख्त, ये नीचे तख्त है ना, भृक्ति रूपी तख्त है, यहां पर यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, और दोनों जो ब्रेन्स हैं, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन है ना, उनका जो कंट्रोल रूम है वो हाइपोथैलेमस है, इसलिए उसको ब्रेन और ब्रेन भी कहते हैं। दोनों राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का जो कंट्रोल रूम है, जहां पर दोनों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, जहां से सारा डायरेक्शन दोनों दिमाग को जाती है, या दोनों दिमाग जहां पर केंद्रित होते हैं, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसी में घड़ी भी लगी हुई है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। एक तो होती ना घड़ी, ये वाली, और दीवार में घड़ी लगी है, वो तो फिजिकल क्लॉक है, वो तो वैसी घड़ी है, स्थूल घड़ी है, और हमारी इसके अंदर भी घड़ी लगी है हाइपोथैलेमस में, उसे जैविक घड़ी कहते हैं। उस जैविक घड़ी में हर चीज का टाइम नियत है, सोने का समय कितने बजे सो जाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे मेडिटेशन करना है, कितने बजे स्नान करना है, कितने बजे सैर करनी है, कब तक चुप रहना है, कब नाश्ता करना है, कब घर ऑफिस में काम करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, उसका हर चीज का टाइम नियत है, फिक्स है। अगर हम उस समय के अनुसार काम करते हैं, उस समय पर काम करते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी में, थोड़ी सी ऊर्जा खर्च करके, या थोड़े पैसे खर्च करके, जैसे हम कुछ चीज काम बाजार से लाते हैं ना, वो चीज उस समय सस्ती मिलती है, बाद में जाओ तो, जैसे टमाटर है ना, टमाटर सीजन में कितने पैसे का मिलता है, 1 किलो 5 रुपए किलो मिल जाता है ना, 5-6-10 रुपए किलो मिल जाता है, और बिना सीजन के क्या भाव टमाटर मिलता है, 50-60-100 रुपए भी मिलता है ना, नहीं? और सीजन में जो 5 रुपए किलो टमाटर मिलता है, उसकी आप सॉस बना के रख सकते हो, सारा साल काम आएगी। और बिना सीजन के टमाटर लेके आप उसकी 100 रुपए का टमाटर लेके 1 किलो उसकी सॉस बनाओ ना, 4 दिन में खराब हो जाएगी। तो 5 रुपए में 1 किलो टमाटर आया, और 10 किलो टमाटर की आप सॉस बना के रख दो, सारा साल काम आ गए। और 50 रुपए का टमाटर ले, आपने टाइम वो उस टाइम काम नहीं किया, उस टाइम सॉस नहीं बनाई, और फिर बाद में आप 100 रुपए किलो टमाटर लेके उसकी सॉस बनाओ तो वो कितने दिन चलेगी? एक हफ्ता भी नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारी जो अंदर क्लॉक घड़ी हाइपोथैलेमस में जो घड़ी है उसके अनुसार काम करें तो वो काम बहुत सहज और सरल हो जाता है। फिर हमारी इस घड़ी में, इसी हाइपोथैलेमस में हमारा एक इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर भी है, थर्मोस्टेट कहते हैं उसको, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 रहेगा, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे बाहर 2 डिग्री टेम्परेचर हो चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे -10 हो, हमारी शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री या 98.4 डिग्री फारेनहाइट रहेगा। बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो भी हमारा टेम्परेचर वही रहेगा, नहीं ऐसे? ये गर्म हो जाता है सर्दी में, ठंडा हो जाता है और गर्मी में गर्म, ऐसा होता है क्या? सर्दी में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाए, 98.4 की बजाय 90 हो जाए, है ना? ऐसा होता है क्या? और गर्मी में 98.4 की बजाय 104 हो जाए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना, फिक्स है बॉडी का टेम्परेचर। तो हाइपोथैलेमस पूरा कंट्रोल रूम है, पूरे ब्रेन की कंट्रोल, पूरा ब्रेन का पूरा कंट्रोल, बॉडी का पूरा कंट्रोल। 80,000 बिलियन कोशिकाओं से हमारा ब्रेन बना है, हमारा बॉडी बनी है, और यहां पर पूरा ब्रेन में आके उसका पूरा उसका कंट्रोल रूम पूरा ब्रेन हो गया, और ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस हो गया। और फिर हमारी इतनी सारी सेल्स, बॉडी की जो सेल्स हैं, डिफरेंट अंग हैं, 8 अंग हैं हमारे शरीर में, उन 8 अंगों का पूरा जो आपस में हार्मनी हो, आपस में सब अंग मिलकर काम करें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं, सोच भी रहा हूं, मुंह से बोल भी रहा हूं, वही बात जो सोच रहा हूं वो बोल भी रहा हूं, और हाथों से एक्शन भी हो रहे हैं, सब कुछ कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेटेड नहीं है क्या? इस समय हार्ट काम कर रहा है, हार्ट बंद हो गया है, हार्ट भी काम कर रहा है, सांस चल रहा है कि सांस बंद हो गया है, सांस भी चल रहा है, और खाना खाया था दोपहर में, खाना पच रहा है कि खाना बंद हो गया है, खाना भी पच रहा है, किडनी में खून भी साफ हो रहा है ना? सारे काम इकट्ठे चल रहे हैं, आपस में फुल कोऑर्डिनेशन है, आपस में हार्मनी है, सब अंगों की झगड़ा नहीं है। उन हार्मोन्स, वो हार्मनी आपस में काम हर अंग की बनी रहे, उसके लिए नीचे हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो उस हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन निकालती हैं, जिससे सारी बॉडी अंग ठीक काम करते रहे, थायराइड है, जैसे पैराथायराइड है, इंसुलिन निकालने के लिए पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, उन सबकी मास्टर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मास्टर कौन, उसका भी कंट्रोल रूम कौन सा? हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस में यहां पर आत्मा का निवास था, समझे आप? आत्मा कहां है, कहां पर रहती है आत्मा? बिल्कुल हाइपोथैलेमस के सेंटर में, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कंट्रोल रूम, और उसके बिल्कुल सेंटर में आत्मा है, उसकी सीट है। और आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म, कितनी सूक्ष्म बताएं, किंतु सत्य है, चेतन है, जड़ नहीं है, अविनाशी है, अकाल मूरत है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। तो इस भृक्त रूपी तख्त पर मैं अति सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, सदा सत्य, सदा चैतन्य, सदा अविनाशी, अकाल मूर्त आत्मा बैठी, इस बात को हम अनुभव करें, उतनी गहराई से अनुभव करें। खाली जब बैठ के योग कर तब नहीं, चलते फिरते हर काम करते ये अनुभव होता रहना चाहिए। खाना बना रहे हैं आप घर में, झाड़ू लगा रहे हैं, आप दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ये अनुभव होते रहना चाहिए। जैसे हमको अभी स्थूल देखकर कितना अभिमान है, कहीं भी हो हम अपने आप को, मुझे पता है मैं सतीश गुप्ता हूं, मुझे पता है कि मैं डॉक्टर हूं, कोई किसी और को भी डॉक्टर बोले तो मैं कहूंगा नहीं शायद मुझे बोल रहा है, मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर था क्या, पैदा हुआ सतीश गुप्ता था, नाम लिखा हुआ आया था क्या, ये तो माँ बाप ने नाम दिया ना, इसका मुझे इतना अभ्यास हो गया है बचपन से सुनते सुनते, और पिछले 35 साल से डॉक्टर, किसी ने डॉक्टर बोलते, डॉक्टर का बोल बोलते बोलते मुझे अभ्यास हो गया मैं डॉक्टर हूं। अब 35 साल से सुनाते सुनाते मुझे लोग बोल रहे हैं तो मेरे को अभी पक्का हो गया डॉक्टर हूं मैं, नींद में भी कोई बोले तो डॉक्टर तो मैं उठ जाऊंगा नहीं, 35 साल लगे मुझे उस अभ्यास को पक्का होने। सतीश गुप्ता का अभ्यास होते होते बचपन से 55 साल हो गए, 56 साल का अभ्यास हो गया है, किंतु ऐसा ही अभ्यास जैसे नाम का अभ्यास होता है, अपने काम का अभ्यास होता है, ऐसा ही अभ्यास उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते शेव करते हर कर्म करते ब्रश करते सोते हुए, इतना गहरा अभ्यास होना चाहिए, नहीं मैं दे नहीं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। हम अधिकतर क्या गलती करते हैं, हम जब सिर्फ योग करने बैठते हैं तब अभ्यास करते हैं मैं आत्मा हूं, मैं दे नहीं मैं आत्मा हूं, अंदर से आवाज नहीं तो तू दे ही है, पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पैर में घुटना खराब हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना, कमर दर्द हो रही है, कमर याद आती है, छाती में दर्द हो रहा है, छाती में सांस नहीं आ रहा ठीक से, सांस याद आता है ना, अपना धंधा याद आता है, अरे वहां जाना, वो पेशेंट को देखना था, उसको देखना था, वो याद आता है। जब चलते फिरते हम अभ्यास करेंगे तो बैठ के फिर हमारा योग लगता है, नहीं होता है, क्या ख्याल है? तो ये अभ्यास हमारा चलते फिरते, ये है धैर्यता के साथ याद करना, एक्यूरेट याद जब होगी ना, एक्यूरेट याद के लिए क्या चाहिए, धैर्यता चाहिए, क्या चाहिए और गंभीरता चाहिए और समझ चाहिए। बाबा ने वो लाइन कही थी मुझे पूरी याद है, जो इस धारणा के आधार पर याद करते हैं उनकी याद से बाप की याद मिलती है, आत्मा में करंट आने लगती है, करंट माना जो परमात्मा शिव बाबा हमारा मीठा बाबा 7 गुणों का सागर है, वो 7ों गुण 7ों एनर्जी मुझ में आने लगती है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है, उससे हम हेल्दी बनते हैं, वो करंट आएगी ना, वो एनर्जी यहां आई आत्मा से, आत्मा में आई और आत्मा से सारे शरीर में जाएगी, तो जो अंगों में शांति नहीं है, प्यार नहीं, खुशी नहीं है, सेल्स में आनंद नहीं है, शक्ति नहीं है, जिसके कारण वो अंग बीमार हो गया है, हार्ट को प्यार नहीं मिला, हार्ट की बीमारी हो गई, फेफड़ों को शांति नहीं मिली, फेफड़े में सांस की सांस ऊपर नीचे हो गया, पेट में खुशी नहीं मिली तो हाजमा खराब हो गया है ना, लिवर ठीक काम नहीं कर रहा है, आनंद नहीं मिला, उदास रहते हो थोड़ी थोड़ी बात फील करते, थायराइड की बीमारी हो गई है, डायबिटीज हो गई है ना, शक्तियां नहीं है, जोड़ खराब हो गए है ना, घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, गर्दन खराब हो गई है ना, 7ों एनर्जी में बैलेंस नहीं है आपस में, 7ों गुणों में ज्ञान बहुत ज्यादा है, पवित्रता है नहीं, पवित्रता रहते हो जिद से पवित्र रहते हो किंतु शांति नहीं है मन में, इच्छाएं बहुत है, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए है ना, दीदी को बिठाओ, दीदी दीदी इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां पे आई ना, इधर आप इधर हो जाओ बेटी, आप इधर हो जाओ, तो ये जो इच्छाएं हमारे अंदर है ना, तो अपने अंदर जो जब तक हम इस बात को गहराई से नहीं अनुभव करेंगे ना, तो बाबा ने कहा था जब हमारी ऐसे करंट आने लगेगी आत्मा में ना, आत्मा में करंट आने लगती है, और करंट आने से क्या होता है, हम हेल्दी बनने लगते हैं, आयु बढ़ने लगती है। मुझे याद है जो मेरे जन्मपत्री में था ना, मेरी जन्मपत्री में लिखा हुआ था मेरे शरीर की आयु 46 साल होगी टोटल, 46 साल में शरीर छोड़ना होगा, और मेरे हाथ की लाइन भी सिर्फ यहां तक ही थी है ना, 40 साल जितनी ही थी, तो जब मैं ज्ञान में आया और जब मधुमेह में शिफ्ट कर लिया, तो मधुमेह में शिफ्ट होने के बाद मतलब मेरे को हार्ट की बीमारी हो गई, मुझे खुद को हार्ट की बीमारी हो गई, मेरे हार्ट की दीवारें मोटी हो गई, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं उसको, उसमें इतनी हार्ट में दर्द होती है बहुत ज्यादा, हर धड़कन में दर्द होती है और हार्ट बीट बहुत इरेगुलर होती थी, और उसमें मैक्सिमम डायग्नोसिस होने के बाद 2 साल में लोग मर जाते हैं अधिकतर। 97 में मुझे हुई थी तकलीफ, 96-97 में, अभी तक तो मुझे मर जाना चाहिए था, नहीं मर जाना चाहिए था, 99 में चले जाना चाहिए था ना, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं, जिंदा हूं कि नहीं हूं, जिंदा हूं कि नहीं। तो ये जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि करंट आने से हेल्दी बन जाते हैं, आज मुझे दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है, कोई हार्ट बीट इरेगुलर नहीं होती है, और आयु भी बढ़ गई है ना, और दिल ठंडी हो जाती है, दिल थर जाती है। मैं वही लाइन पूरी पूरी आप 21 तारीख की मुरली निकाल के पढ़ेंगे तो वही लाइन एक अक्षर में बता रहा हूं आपको, दिल थर जाती, थर माना ठंडी हो जाती है, दिल शीतल हो जाती है, शीतल माना डिमांड इच्छा ही नहीं होती, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, लोग मुझे पूछे तो अच्छी बात है, लोग मुझे पूछते नहीं है, है ना, आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत होनी चाहिए, आखिर मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए, है ना, इच्छाएं खत्म हो जाती, दिल थरने, दिल शीतल होने माना डिमांड्स खत्म हो जाती है, ये ऐसा हो जाए वैसा नहीं, जो जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, किसी से हम डिमांड क्यों करें, हमें लेना तो बाबा से लेना, और बाबा से मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगने से मरना भला, जो कुछ मेरे भाग्य का, जितना मेरे भाग्य का मुझे अपने आप मिल रहा है, और आगे जितना होगा मेरे भाग्य का अपने आप मिलेगा, किसी बात की एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, किसी से उम्मीद हम रखें, क्यों उम्मीद रखें किसी से, वो उम्मीद हमें, इसे कहते दिल शीतल होना, इच्छाएं खत्म हो जाती, इच्छा मात्रम अविद्या, और फिर दिल शीतल होती है, फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है, सतो मतलब सतो प्रधान, सतो प्रधान शब्द कहां से है, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, तब आत्मा सातों गुणों से भरपूर बनती है, वो सतो प्रधान स्थिति को ही पावन स्थिति कहते हैं, शुद्ध स्थिति कहते हैं, वो शुद्ध ऐसी स्थिति है जिसमें हम आप हमारा मन बुद्धि संस्कार एकदम जैसे सब संतुष्ट, फुल संतुष्ट, भरपूर, जब वो स्थिति हम आ जाएगी तो हम इस दुनिया में रह नहीं सकते, तब हमारा शरीर छूट जाता है, एक्चुअली वही स्थिति कर्मातीत स्थिति है, तो इसको हम बहुत गहराई से अनुभव करने की आवश्यकता है, ठीक है, जैसे बाबा की ये प्रश्न उत्तर था उस दिन ना, एक्यूरेट यार के लिए क्या चाहिए, तो एक एक, एक बात बाबा की मुरली की अगर हम गहराई से मनन चिंतन, इसके मुरली सुनने के भी हमारे 6 स्टेप हैं, पहला है श्रवण, श्रवण माना सुनना, कई लोग मुरली घर में ही पढ़ लेते, कमरे में ही पढ़ लेते, इंटरनेट पे मोबाइल पे पढ़ लेते मुरली पढ़, उसका नंबर नहीं होता है, खाली मुरली सुनने का या पढ़ने का महत्व नहीं है, मुरली सुन के मेरे जीवन में आ जाए, मेरा जीवन वैसा बन जाए, उसका महत्व है। तो मुरली सुनने के लिए, तो जैसे हम जब रिकॉर्डिंग करते, रिकॉर्डिंग कहां करते हैं, जहां पे साइलेंस होती है, उसका डबिंग रूम होता है जहां फिल्मों में होता है, या इवन हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो में जाके ऊपर देखो कैसा है डबिंग रूम, साउंड रिकॉर्डिंग रूम कैसा है, एकदम सील्ड होता है चारों तरफ से, जिसमें बाहर की कोई आवाज नहीं आती, तो वैसा रिकॉर्डिंग, ये जो बाबा का घर है, बाबा का सेंटर है, क्लासरूम है, वो रिकॉर्डिंग रूम है। तो हमें अगर चाहते हैं कि मुरली हमारे जीवन का, बाबा की श्रीमत है मुरली, और मुरली हमारे जीवन में चली जाए, उतर जाए यूं कहीं, तो उसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम सेंटर पे आकर के और उस भावना से, उस भाव से मुरली सुने। बैठे सेंटर में है क्लास में, और ऐसा फील कर, जब बाबा सामने कोई बहन भी सुना रही है या कोई भाई सुना रहा है, आप मैं बाबा की गोद में बैठा, बाबा कितने दूर है यहां से, बाबा कितने दूर है यहां से, सूक्ष्म वतन कितने दूर है, सूक्ष्म वतन कितने दूर है? अच्छा आपका घर कितने दूर है जहां से भी आए? मान लीजिए आप इंदौर से आए, इंदौर कितने दूर है यहां से बताइए, कितने किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर है। क्या यहां बैठे बैठे आप अपने घर में जा सकते हो? सोचा और पहुंचे नहीं। अगर आपको अपने ड्राइंग रूम में जाना हो अपने घर के, इंदौर में आपका घर है, और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? सोचते ही पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं। अपने ड्राइंग रूम में जाना हो, बेडरूम में जाना हो, पहुंच गए नहीं एकदम? एकदम सोचा और पहुंच गए ना। तो सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। ऐसे सूक्ष्म वतन कितनी दूर है हमसे? कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर। बाबा की गोद हमसे कितनी दूर है? सोचा और पहुंचे, है ना। तो ऐसे हम वहां पर चले जाएं, सोच के, सोच से हम वहां पहुंच सकते हैं। तो बाबा सोचो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस गहराई में चले जाएं, इसको फील करें, तो हम यहां से बैठे बैठे सीधे बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। और फिर बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो, बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, लिखो भी सुनो भी, जो बहन सुना रही है उसको भी देखते रहो, बाबा क्या सुना रही है, वाइब्रेशन भी लेते रहो। क्योंकि बाबा की जब कोई बहन मुरली, जब बहन या भाई मुरली सुनाता है, सासा शक्ति भी देता धारणा के लिए, ताकि वो धारण हो जाए। तो मुरली सुनना, रिकॉर्डिंग बहुत बहुत ध्यान से, कोई और संकल्प उसमें, कोई और आवाज मेरे मन में ना आए किसी तरह की, ना घर की, ना देह की, ना देह की दुनिया की, ना देह के पदार्थों की, ना देह के स्वभाव संस्कार की, कोई भी उसमें और का संकल्प ना आए। इसलिए मैं बहुत अटेंशन रखता हूं, जब मुरली सुनता हूं ना, लिखता भी रहूंगा, सुनता भी रहूंगा, उसको अनुभव भी करता रहूंगा, ताकि पूरा एक घंटा मेरा पूरा मुरली में जाए, और कभी मुरली मिस ना हो। घर में हम पढ़ लेते हैं सुबह ही, अमृत कलाम योग करते ही मुरली पढ़ते हैं, किंतु फिर उसको हम ध्यान रखें कि वो मुरली हमें दोबारा से ऐसे पढ़नी, सुननी है बैठ कर। तो पहली बात है सुनना, फिर है मनन करना, मनन माना रिवाइज करना। फिर जैसे वॉकिंग कर रहे हैं तो बाबा की मुरली निकाल ली, ये बाबा की, उसको मन मन में दोबारा रिवाइज किया, रिकॉल किया, आज बाबा ने क्या कहा था, मीठे बच्चे क्या था, आज का प्रश्न क्या था, उत्तर क्या था, बाबा ने आज मुरली में मुख्य बातें क्या कही थी, कितने पॉइंट्स थे मुरली में, धारणा के लिए मुख्य सार क्या था, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, उसको फिर मन में रिवाइज करो, रिकॉल करो, रिवाइज करो। चिंतन, फिर चिंतन तीसरा स्टेप है, चिंतन। चिंतन माना जो बाबा ने कहा, क्या मैं ऐसा करता हूं, बाबा ने कहा बच्चे तुम मीठा बोलो, मधुरता और नम्रता तुम्हारे जीवन का अंग होना चाहिए। अगर तुम्हें संडे की मुरली थी ना पीछे, मनन शक्ति वाली, तो मधुरता और नम्रता है तो फिर हमारे जीवन में वो त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, दृष्टांत रूप बन सकते हैं, साक्षी दृष्टा रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। तो क्या मेरे अंदर है, मैं हर काम करते समय पहले त्रिकालदर्शी होकर करता हूं, क्या मैं साक्षी दृष्टा होता हूं, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उसमें इंटरफेयर तो नहीं करता, उसको क्वेश्चन तो नहीं करता ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मैं ऐसे कर्म करता हूं दूसरों को, दूसरों के लिए सैंपल बनूं, एग्जाम्पल बनूं? तो ऐसे मतलब मैं तो नहीं करता हूं, मेरे को तो गुस्सा आ जाता है, कोई दूसरा ऐसा करता है, झूठ बोलता है, कुछ ऐसे करता है, वैसे चिंतन होना चाहिए ये बात मेरे अंदर कैसे आए। जैसे आज की मुरली का पॉइंट था, परसों बाबा ने कुछ बातें बताई, तो बाबा ने ये कहा कि तो मेरे अंदर है क्या ये, उसके लिए फिर मैं क्या करूं। चिंतन, अंदर चिंता, चिंता तो नेगेटिव रूप है, चिंतन पॉजिटिव रूप है, कि बाबा ने ये कहा मेरे जीवन में लाऊं मुझे इसको, इसको मेरे जीवन में आनी चाहिए ये बात, मुझे पता है मेरे जीवन में नहीं है, सच्चाई से उसको देखो, मेरे जीवन में नहीं, मेरे जीवन इतनी सी है, होना चाहिए इतनी सारी है, इतनी सी, तो वो मेरे अंदर में कैसे आए। चिंतन अंदर से, और फिर चिंतन के बाद मंथन, या तो आप अपने आप से चिंतन करोगे तो आपके अंदर निकलेगा, नहीं तो मंथन, मंथन है ना, फिर बाबा को उसमें इन्वॉल्व कर लो, बाबा मैं तो इतने साल से, 30 साल से मैं तो कर रहा हूं, मेरे अंदर तो आई नहीं अभी तक, एक बार मैं सुन भी रहा हूं किंतु आती नहीं मेरे अंदर, मैं क्या करूं। आप कहते हो आखिरी समय आ गया, मैं क्या करूं, है ना। तो बाबा कहेगा बच्चे तुम ऐसे करो, बाबा आपको वो पॉइंट निकाल के देगा, वो है मंथन मक्खन। उस जो मंथन से जो निकला, मंथन से जो पॉइंट निकला, या तो आपने अपने आप खुद निकाला, या आपसे निकला, नहीं तो आप बाबा से निकाला, या किसी से रूढ़ियान करो आपस में अपने हम जिन्स के साथ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो मंथन हुआ। ठीक है, या तो अपने आप किया, बाबा को साथ लेके किया, या किसी आपस में ग्रुप में बैठ के किया, तो मंथन। फिर पांचवा स्टेप है सिमरन। सिमरन का मतलब ये नहीं कि उसको उस पॉइंट को बार बार रिवाइज करो, सिमरन का मतलब है कर्म करते हुए फिर उस बात को यूज करो। सिमर सिमर सुख पाओ, इसका मतलब है सिमर सिमर सुख पाओ, फिर हम कर्म में जब उस बात को यूज करेंगे तो हमें सुख अनुभव होगा। और सिमरन हर समय अटेंशन याद रहेगी तो वो चीज हम कर्म में लाएंगे तो नया संस्कार बन जाएगा। वो नया संस्कार, वो नई आदत क्या होगी, उससे हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति स्वरूप माना वो अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। कर्म में लाने से रिकॉर्डिंग होती है, तो जो पुरानी रिकॉर्डिंग थी गुस्सा करने की, चिंता करने की, डरने की, वो रिकॉर्डिंग के ऊपर नई रिकॉर्डिंग क्या आ गई, खुश रहने की, मुस्कुराने की, समस्याओं में अचल अडोल रहने की, वो नई रिकॉर्डिंग आ गई। हमने किया, बार बार किया, फिर जब कार्य किया फिर दोबारा किया, जब कार्य किया वो फिर दोबारा किया, सामने वाला गाली दे रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, बुराई सुनते हुए साक्षी दृष्टा रहे, उसको अंदर से उसके प्रति हम शुभ भावना करते रहे, उसने भी बोल के पूरा किया तो उसको थैंक्स बोल दिया। तो हमने जो ये किया वो अंदर हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गया और ये नया संस्कार फिर इमर्ज हो गया, और पुराना संस्कार जो चिड़चिड़ेपन का था वो खत्म दब गया, वो मर्ज हो गया, नया संस्कार इमर्ज हो गया। ये बात समझ में आ रही कैसे होता है? तो इस तरह से हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। मुरली में जो कुछ सुना वो शाम होते होते हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गया, अब वो चीज मेरे जीवन का अंग बन गई। तो इस तरह से हम इस कार्य को करें। अब हम आते हैं विकर्म, अब ये बात समझ में ना आ गई ना हमें, तो कैसे हम इस तरह से हम करें एक्यूरेट याद, क्योंकि एक्यूरेट याद या यथार्थ याद के द्वारा ही विकर्म विनाश होते हैं। मैं बैठ के बाबा से ऐसे बातें करता रहूं और अपने ओरिजिनल स्वरूप में ना टिकूं, अपने को आत्मिक स्वरूप चलता फिरता अनुभव ना करूं, मैं आत्मा यहां बैठ के सब कुछ कर रही हूं वो अनुभव ना करूं, और बाबा को मैं आत्मा बिंदी बन के बिंदी बाप को याद ना करूं परमधाम में, तो मेरा विक्रम विनाश नहीं होता है। विक्रम होता नहीं है किंतु विक्रम विनाश भी नहीं होता है। अब मैं आपसे आता हूं कि कैसे हमारे 63 जन्म जो हैं, 63 जन्म हमने विक्रम किए हैं ना, द्वापर युग से शुरू किए, द्वापर युग में सबसे पहले तो हमारे अंदर देहभान आया, बॉडी कॉन्शियसनेस आई, उससे फिर हमारे अंदर काम विकार आया, फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चे आए, उससे बीमारियां पैदा हुई, आत्मा की एनर्जी कम हो गई, सातु एनर्जी कम हो गई, और आत्मा की एनर्जी मन के माध्यम से शरीर में जाती है। मन माना मन के 4 एस्पेक्ट हैं, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, इंग्लिश में टीम कहते हैं, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज। तो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्पों के थ्रू आत्मा की एनर्जी सातु ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां वो फिर बॉडी में जाके हमारी बॉडी के हर सेल को नरिश करती। जब आत्मा की बैटरी कमजोर हो गई तो फिर क्या हुआ, हमारा मन भी, मन जो था आत्मा की बैटरी कमजोर हुई, आत्मा अभी आत्मा का जो नेक्स्ट पावर कौन थी, मन था। मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से था, आंख से नाक से कान से मुख से त्वचा से था। सत्युग में आत्मा क्या करती थी, आत्मा मन को भी नरिश करती थी 7 गुणों से, बुद्धि को भी नरिश करती थी और संस्कारों को भी नरिश करती थी, नरिश माना पोषण करती थी, ताकि हमारा मन भी सत्व प्रधान रहे, बुद्धि भी सत्व प्रधान रहे, 7 गुणों से भरपूर थी, और संस्कार भी हमारे दिव्य रहे, 7 गुणों से भरपूर रहे। जब आत्मा की बैटरी धीरे धीरे कम हुई, आधी हो गई, 50% से कम 49% हो गई, तो आत्मा 49% हो गई, मन क्या हुआ, मन 51% एनर्जी हो गई। तो मन ने कहां से एनर्जी लेनी शुरू कर दी, आत्मा से तो एनर्जी कम आ रही थी, मन ने आंखों से, आंखों के थ्रू बाहर दुनिया में क्या वो देखना शुरू कर दिया, कानों के द्वारा बाहर का सुनना शुरू कर दिया, मुख के द्वारा बाहर की चीजें टेस्ट करनी शुरू कर दी, टेस्ट को फील करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, जो जैसा आया उसको ऐसे मर्जी बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। तो बाहर पांचों तत्वों को देखना शुरू कर दिया। पांचों तत्व सबसे पहले क्या चीज देखी उसने? देह देखी, देह की तरफ आकर्षित हुआ, मन उधर आकर्षित हुआ, काम विकार आ गया, उससे आत्मा की बैटरी और कमजोर हो गई। फिर उसको उसको पजेस करने के लिए क्रोध आया, उसको खुश करने के लोभ आया, उसको ये ला के दूं, उसको वो ला के दूं, उसके लिए करके दूं, उसके लिए, और उससे जो बच्चे पैदा हुए, उससे चीजें पैदा हुई, उससे उसमें मोह आ गया, और फिर जो इकट्ठा कर लिया, जो हो गया, वो अहंकार आ गया। ऐसे पांचों विकारों की उत्पत्ति हुई, और फिर इनके बाल बच्चे जैसे मैंने पहले बताया वो आते चले गए। तो हम विकारों के वश 63 जन्म पहले ही काम करना शुरू किया, वो रिकॉर्ड होता गया। हर जन्म में हम सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करते गए, अगले जन्म में सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बन गया, हमें याद नहीं रहा, किंतु वो रिकॉर्डिंग अंदर चले, वो चीज लेकर के हम अगले जन्म में चले गए, आत्मा वो चीज लेकर अगले जन्म में चले गए। तो ऐसे हम जन्म बाई जन्म हम विकर्म करते चले गए, और फिर हम आकर के 83वें जन्म में जब आए तो हमें बाबा मिला, 83वें जन्म में मिला ना, तो हमारा दिव्य जन्म हुआ। शिव बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, शूद्र माना मतलब मनुष्य, माना मन के वश में मनुष्य, आज की मुरली में था देवता थे पहले सत्यु त्रेता में, फिर मनुष्य बने, मनुष्य माना सत्यु त्रेता में आत्मा का राज्य था, स्वराज्य अधिकारी थे, आत्मा स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य था मन बुद्धि संस्कार पर, पांचों कर्म इंद्रियों पर और आठों अंगों पर। आत्मा सात गुणों से सबको सबको पोषण करती थी, और जब मन का राज्य हो गया तो आत्मा के, आत्मा तो बंधन में चली गई, आत्मा तो अंदर रह गई, और मन का राज्य हो गया तो आत्मा अभी मन जो है अपने अपने हिसाब से चलने लगा, लगाव झुकाव टकराव में चलने लगा, प्रभाव में चलने लगा, और कर्मेंद्रियां उसकी आदती बन गई, हैबिट उसकी हो गई, कर्मेंद्रियां हावी हो गई आत्मा के ऊपर, और आठों अंग भी कंट्रोल से बाहर हो गए, बीमारी आने लगी। फिर हम उन उसी आवश्यकता के अनुसार शरीर के लिए गलत काम करते रहे, आदत पड़ गई गलत काम करने, और पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर वो रिकॉर्ड हम करते 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 सत्युग में त्रेता में हमारा मन 100% कॉन्शियस था, कॉन्शियस माना ट्रांसपेरेंट था। सबकॉन्शियस माइंड सत्युग देवताओं को नहीं होता है, अनकॉन्शियस माइंड भी नहीं होता देवताओं के अंदर। तो हमारा जब हम गलत कर्म जो भी गलत कर्म करते हैं, जो मर्यादा के खिलाफ करते हैं, सभ्यता के खिलाफ करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड जमा होता रहता है। जब शरीर छोड़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस बन जाता है, और अगले जन्म का सबकॉन्शियस शुरू हो जाता है। तो ऐसे करते करते हमारा सबकॉन्शियस बड़ा होता चला गया, और अनकॉन्शियस बड़ा, और हर जन्म का सबकॉन्शियस भी बड़ा होता चला गया। विचारों की स्पीड बढ़ती चली गई। जो विचार सत्य में हमारा एक विचार आता था, हर काम सक्सेसफुल होता था, सिद्ध हो जाता था। अभी क्या हुआ, 20 विचार करते एक काम भी नहीं होता, इससे अशांति पैदा हुई। विचार तेज हो गए, सक्सेस मिलने रही, अशांति पैदा हुई। 30 विचार कर रहे हैं, और विचार कर रहे हैं, इतने विचार के काम कुछ भी नहीं हो रहा, दुख होने लगा। ऐसे दुख और अशांति बढ़ती गई। तो ऐसा होते होते हम यहां पहुंच गए, बाबा मिला। बाबा ने हमें मनुष्य से क्या बनाया, ब्राह्मण बनाया। मनुष्य माना जिसका मन और बुद्धि हद में है, अपनी देह में है, देह के संबंधों में है, देह के स्वभाव संस्कार में है, देह के पदार्थों में खोई हुई है। बाबा ने हमें क्या किया, बेहद की बुद्धि दे दी, बेहद। ब्राह्मण माना ब्राह्मण है बड़ा, बेहद, बेहद की बुद्धि और मन दे दिया, जिसमें मैं आत्मा हूं, हम सब आपस में आत्माएं, भाई भाई हैं, एक परमपिता परमात्मा शिव की संतान है, हमारे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, शिव बाबा उसका डायरेक्टर है, और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो ये अंदर से बाबा ने हमको हमारी बुद्धि में भर दिया, बुद्धि में भर दिया, इसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। ये जो दिव्य बुद्धि है, इसके आधार पर हमको मन और संस्कारों का परिवर्तन करना पड़ा। मन परिवर्तन नहीं किया बाबा ने, मन हमें परिवर्तन करना है, संस्कार मन अपनी आदतें हमें परिवर्तन करनी है। तो 63 जन्म इस तरह से हमारे जो है ये जो अब पीछे जो हम करते आए हैं, अब हम जब बाबा को याद करते हैं, और अमृत वेले का समय विक्रम विनाश करने का, 84वां जन्म जो हमको बाबा से मिला दिव्य जन्म, इसमें जो बाबा हम जो जन्म लेने के बाद फिर भी हमने श्रीमत के खिलाफ कार्य किए, गुस्सा किया, जल्दी की, चिंता की, किसी को गलत देखा, गलत बोला, अमर्यादित कर्म किए, तो वो जो कर्म किए वो उसका 100 गुना दंड हो गया। ये 84वें जन्म के पाप कर्म सबसे ज्यादा है, 63 जन्म के तो है ही, किंतु बाबा के बनने के बाद भी हमने कितने विक्रम हो गए उसका 100 गुना हो गया, वो 63 और ये 100 कितना हो गया। तो हमें क्या करना है, जब बाबा की याद में बैठते हैं तो हमें सबसे पहले इस 84वें जन्म के पाप विनाश कर, अमृत वेला इसका बेस्ट समय है। सो इसके लिए टाइम पर सो जाना बहुत जरूरी है, 9:30 सो जाना चाहिए। जब तक हमें गहरी नींद नहीं आएगी हम सुबह अमृत वेले फ्रेश होकर उठ नहीं सकते, और गहरी नींद कब आएगी, जब हम सोने के पहले अपना एक चिट्ठी लिखेंगे बाबा को, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल, जो अच्छी बातें बाबा की श्रीमत पे की पहले वो लिखो, बाबा मुझसे हमने आज सुबह सुबह आपने ऐसे कहा था, हमने अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, ये भी किया, ये अटेंशन रखा, ऑफिस में भी ध्यान रखा, ये बार बार मुरली रिवाइज भी की, जो भी बाबा ने कार्यक्रम दिया है ना, अटेंड पूरा सच्चाई से लेटर लिखो, और जो गलतियां होगी वो भी लिखो, बाबा आपने तो कहा था ऐसे करना किंतु मैं ये नहीं कर पाया, ये मेरे से गलती हो गई, मैं पक्का करूंगा कल नहीं ये गलती नहीं करूंगा, तो बाबा ऐसे से, बाबा ये गलती हो गई, बाबा ऐसा हो गया, बाबा ये ऐसा हो गया, बाबा उसने मेरे को ऐसा बोला ना मेरे मुंह से भी निकल गया, उसे एक्सेप्ट करो, कन्फेस करो, लिखो लेटर, लेटर लिख के साइन करो नीचे, साइन करके बाबा को, बाबा का हॉटलाइन नंबर पता है आपको, हॉटलाइन फैक्स नंबर है उसका, हॉटलाइन फैक्स नंबर क्या है, 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो कुछ बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, तो लेटर उसके पास पहुंच जाता है ना, फिर लेटर को फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। तो ये तो आप रोज रोज लिखो, लिख के फिर चार्ट भरो, कितने घंटे मेरी टोटल याद हुई, कितने मिनट में टोटल याद किया, घंटे घंटे में कितनी याद, चेक करो कितने मिनट बाबा की याद में रहा, फिर मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ के फिर बाबा को याद करके सोचो, एकदम इतनी गहरी नींद आएगी, बहुत बढ़िया गहरी नींद आएगी, और उस समय टाइम कर दो बाबा मुझे 60 दिन उठा देना, एक्यूरेट 3:30 भी क्या, 3:29 पर बाबा आपको उठाएगा, उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग माना बाबा को याद करना, गुड मॉर्निंग का मतलब नहीं बाबा गुड मॉर्निंग बस ऐसे बोल देते, माँ बाप को बोल देते ऐसे नहीं, गुड मॉर्निंग में सच्ची दिल से अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता को याद करो, उठते ही याद करो, और याद करके फिर ब्रश करके मुंह हाथ धो के अच्छे से सिर में पानी लगा के और फिर अच्छे से एक्टिव फ्रेश हो जाओ, हो सके तो कपड़े बदल लो, और फिर बहुत आराम से सोफे बैठ के जहां भी आपके कमरे में ड्राइंग रूम में जगह है वहां बैठ के बहुत 45 मिनट खूब अच्छे से अभ्यास से याद, सीधे सूक्ष्म वचन में चले जाओ बाबा की गोद में, चलो 1 सेकंड में बाबा की गोद में जा सकते हैं, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में बैठो, एकदम बाबा स्विच ऑन करो, बाबा की गोद में पहुंच गए, फिर बाबा से बात करो, परमधाम में चले जाओ, परमधाम में फिर विक्रम विनाश होते हैं, जब एक ही संकल्प आ जाता है विक्रम, ज्वालामुखी योग कहते हैं उसको, उसमें विक्रम विनाश होते हैं, 84वें जन्म के विक्रम विनाश करो, 83वें जन्म के विक्रम विनाश करो, 82वें जन्म के विक्रम विनाश करो, 81वें जन्म के विक्रम विनाश करो, विक्रम समझे ना क्या क्या होते हैं विक्रम, 80वें जन्म के विक्रम विनाश करो, उस स्थिति में टिको 1 मिनट 2 मिनट टिको एक जन्म के विक्रम विनाश करने में, फिर 79th है ना, 78th जन्म के विक्रम विनाश, क्योंकि सभी जन्म के विक्रम है ना, रिटर्न जर्नी है ना, विक्रम विनाश करते जाओ ऐसे ऐसे, बस उस वहां पे बाबा के साथ परम धाम में, मैं आत्मा बिंदु मेरा बाप बिंदु परम धाम में, वो स्थिति में कितने मिनट टिको फिर वो विक्रम विनाश होते जाए, अटेंशन रहेगा कि मुझे इतने जन्मों का विक्रम विनाश करने, तो फिर आपका उधर रहोगे, नहीं तो क्या हुआ, बस एक आधा मिनट गए ऊपर से नीचे आ गए, कितना काम करना बाकी वो देखो ना, तब तो सब तब तो ध्यान ऊपर रहेगा ना, नहीं तो नीचे का ध्यान रहता है अभी ये करना अभी ये करना अभी ये करना है ना, तो अटेंशन रहे ना कि मेरे को इतना इतने जन्मों के विक्रम है ना, और जब 63 जन्मों के विक्रम विनाश होंगे, तो जब 63 जन्मों के ऐसे ऐसे रोज रोज अभ्यास होना चाहिए, फिर कर्माती मतलब 63 जन्म में पूरे हो जाएंगे तो हम 21वें जन्म में पहुंच जाएंगे, 21वें जन्म माना 20वां जन्म, 20वां 8 जन्म सत्युग के 12, तो वहां अक्रम होते हैं। अक्रम माना हमने कोई पाप कर्म नहीं करते, तो हमारे अंदर क्या होगा, उसे कर्मातीत स्थिति कहते हैं। जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तो हमारी बैटरी एकदम से चार्ज होने लगती है, बाबा से एकदम करंट आने लगते हैं जोर से, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति, एकदम आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते। और जैसे आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस बनती है, ऊपर ही करो ये, और लाइट हाउस माइट हाउस बनती है तो फिर अवेक्ट, अवेक्ट माना फिर अवेक्ट स्थिति माना बोलने की आवश्यकता नहीं। फिर क्या होता है, जब लाइट हाउस माइट हाउस अब बन गए तो फिर आपके अंदर स्मृति रिकॉर्ड हो जाती है उस स्थिति उस बात की। वो रिकॉर्ड होने से क्या होता है, फिर आपकी जो वृत्ति है भावना और संकल्प उसके द्वारा विश्व की मनसा सेवा होने लगती है ऑटोमेटिक। परम धाम में बैठे बैठे आपने मुरली में सुना होगा, जब आप परम धाम में बाबा की याद में होते सारे विश्व की मनसा सेवा आप ही होती है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये बल्ब जल रहा है ना, बल्ब को कहने की आवश्यकता है कि तुम लाइट मेरे से बाहर निकलो, ऐसे करता है क्या बल्ब? बटन ऑन हुआ, लाइट बाहर निकलने शुरू हो गई और रोशनी हो गई सब जगह। तो इसी तरह से जब हम पावरफुल स्थिति में बैठे हैं तो ऑटोमेटिक सारे विश्व में वो ज्ञान के वाइब्रेशंस, मतलब ये अपने आप वाइब्रेशन यहां से जाने लगते हैं, तुम स्थूल देह नहीं, तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, सब आत्मा को जागृति पैदा होने लगती है। तो सो रहे हो भले कोई बात नहीं, भजन कर रहे हो तो भले तब भी उनको पहुंचता है, तुम देह नहीं है तुम आत्मा हो, दोनों व्यक्तियों के मध्य तुम बैठे हो, आत्मा सारे शरीर को चला रही है, इसकी गहराई अनुभव होने लगती है, राइट। तो इसको हमें, और मैं आत्मा का सरल संबंध शिव बाबा के साथ है, एक एक संबंध की अनुभूति जो आप करते हो उसको सबको पहुंचने लगती है, उनको पका पका एक खजाना पहुंचने लगता है, ज्ञान पवित्रता शांति प्यार रूहानी प्यार अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आनंद की अनुभूति शक्तियों की अनुभूति। स्पेशली जो आईसीयू में दाखिल है, सीसीयू में दाखिल है, उनके रिश्तेदार जो बाहर बैठे हुए हैं, भगवान को याद करें हमारा मरीज जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि भगवान को याद करें, मंदिरों में जो भगवान को याद कर रहे हैं, मंदिरों में ज्यादा लोग भगवान को याद नहीं करते अपने मतलब के लिए जाते हैं, तो आईसीयू सीसीयू के बाहर जो बैठे होते हैं ना वो सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, जिनके पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला होता है वो सच्चे दिल से भगवान को याद कर रहे होते हैं। पता है आपको, नहीं पता है? मैं तो यही मनसा सेवा करता हूं, क्योंकि वो उनकी लगन बहुत जोर से होती है बाबा को, मंदिर वालों को नहीं होती है, मस्जिद वालों को मतलब के लिए होती है, किंतु उनको बहुत पक्की लगन होती है। तो जो बीमार है उनकी सेवा मनसा सेवा करो, जो डिप्रेशन में है उदास है साइकोसिस में है जल गए हैं है ना, ऐसी असहाय जो हो गए हैं जिनका कोई साधन नहीं इनके पास नहीं है, ऐसे लोगों की ऑटोमेटिक करंट जाने लगती है, जो अपना स्विच ऑन करके बैठे भगवान की याद में बैठे वो करंट जाने लगती है। तो ये जो हम अवेक्ट माना वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बन जाता है आपके आसपास, भावना के द्वारा वाइब्रेशन जाते हैं और संकल्पों से सेवा होने लगती है, यही मनसा सेवा है। और तब आप फरिश्ता बन जाते हो, फिर फरिश्ता बन के सारे विश्व में बाबा के साथ, फिर सूक्ष्म मदन में आ जाओ, फिर बाबा के साथ मिलकर सेवा। तो इस तरह से जब सेवा करेंगे तो यह है विकर्माजीत कर्मातीत संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। तो धीरे धीरे रोज का रोज अभ्यास करते जाओ, फिर अमृत वेला करने के बाद मुरली पढ़ो, फिर जो है फिर नहाते तो स्नान करते समय बाबा की याद में रहो, बाबा ने आज क्या अनुभव करा उस अनुभूति में रहो, फिर मुरली से जाके सुनो क्लास में, फिर मुरली कम से कम 20-21 बार रिवाइज करो दिन में, सारा पॉइंट नहीं करो भले एक एक पॉइंट रिवाइज करो, फिर उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण करो, और फिर शाम को सोने के पहले फिर लेटर लिख के बाबा को, शाम को आधा घंटा योग समय आधा घंटा फिर योग करो, और फिर बाबा को याद करके सो जाओ, 9:30 सो जाओ 3:30 उठ जाओ। तो इस दिनचर्या को जब हम करते रहेंगे दिन प्रतिदिन लगन के साथ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी स्थिति बन जाएगी, हम विकर्माजीत बन जाएंगे, हम कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मातीत बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत जरूरी है, स्व माने आत्मा इतनी सातों गुणों से भरपूर हो जाएगी तो मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, पांचों कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी और हमारे आठों अंग भी कंट्रोल में आ जाएंगे। भले कोई बीमारी डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है हार्ट की बीमारी है सिर दर्द है होगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा आपको, पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब अभ्यास करते 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 इसमें दो बातें चाहिए, एक तो बेहद का वैराग्य, बुद्धि कहीं अटकी हुई ना हो, किसी अपनी देह में किसी और की देह में किस संबंध में अपने आदत आसक्ति में ये खाऊं ऐसा करूं बिल्कुल बेहद का वैराग्य है ना। और दूसरा अभ्यास बार बार अभ्यास, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, जो दादी जी बताते ना, इसका बार बार अभ्यास। और चौथी बात है अंतर्मुखता, अंतर्मुख अपने अंदर देखते रहो, अंदर देखो मैं कौन हूँ, बाहर मत देखो, बाह्य मुखता मत रखो। ये चार बातें जब ध्यान रखेंगे तो हम एक दिन बहुत सहज ही क्या बन जाएंगे, विक्रमाजीत, कर्मातीत, संपूर्ण, अव्यक्त फरिश्ता। ओम